नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वायुसेना ने असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी 5 जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 162 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 6वें ओवर में 1 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।